શ્રી નિયમસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 10.
શુદ્ધ નિકા વિષયભૂત આત્મા કેસા હૈ, પાંચ વિશેષતાઓ સે દ્રષ્ટાંત પુરસ્કાર ઉસકો સમજાતે હૈ. પહેલા દ્રષ્ટાંત દિયા કમલિની પુત્રતા, કમલ કે પત્તા જો હૈ પાણી પર રહેતા હૈ હમેશા, સંયોગ સે પાણી ઉસકો સ્પર્શ કિયા હુઆ દિખતા હૈ. સ્વભાવ સે દેખે તો પત્તા કોરા હૈ, બિલકુલ ભીગા નહીં હુઆ હૈ. ઉસ દ્રષ્ટાંત અનુસાર અબ આત્મા કી બાત કરતે હૈ. इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्मों से बंधन में स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर मतस्पृष्टता कृतार्थ है, त्याग है. संसार अवस्था में जीव कर्म बंधन में अनादि से पड़ा है, वो बात संयोग अपेक्षा से ठीक है और उनकी ऐसी योग्यता भी है. तथापि उसको गौण करना है. तथापि कह करके क्या कहते हैं कि उसको गौण करके उद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव. कैसा है आत्म स्वभाव? कि जो उद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित होने योग्य नहीं है. स्वभाव को उद्गल स्पर्श नहीं कर सकता, स्वभाव को विभाव स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा स्वभाव है. ऐसा आत्म स्वभाव उसके समीप जाकर अनुभव करने पर, समीप जाना माने क्या, समीप जाना अर्थात मैं ही ऐसा हूँ, दूर नहीं रहना. समीप जाना का मतलब क्या है? दूर नहीं रहना. तो दूर नहीं रहने को किंचित मात्र दूर नहीं रहना. आत्म स्वभाव तो स्वयं का रूप है, स्वयं का स्वरूप है. तो मैं ही ऐसा हूँ, ऐसा मुख्य करके मेरे में कर्म बंधन नहीं है, ये त्रिकाल अबंध स्वभावी अबंध स्वरूपी हूँ, ऐसा अपना स्वरूप में अपनापन करके, अपना स्वरूप में अपनापन करके दूसरे में अपनापन करना हो तो कुछ बाधा है? अपने में अपनापन करने में कौन सी बाधा है? समीप जा करके अनुभव करने पर, ज्ञान करने अनुभव करने पर, समीप जा करके अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता और विकार और असत्यार्थ है. जो कर्म का बंधन है वो स्वभाव को लागू नहीं करता और कर्म का अस्तित्व भी वहाँ नहीं है. स्वभाव में ए भूतार्थ में वहाँ उसका अस्तित्व नहीं है. उपयोग को स्वभाव की तरफ तो ले जावे, लेकिन वो कैसे जाएगा कि अहमपना स्थापित होगा. जहाँ तक अहमपना नहीं आएगा वहाँ तक तो उपयोग उसकी तो जाएगा नहीं, अपने और उपयोग आएगा नहीं. समीप जा करके, स्वरूप के समीप जा करके अनुभव करना, मैंने दूरी मत रखना, अपना स्वरूप से अपने भाव में दूरी मत रखना। पूर्ण वो प्रकाश में आता है कि अपने परमात्मा को दूर मत देख, सौन के रूप में देख, यही स्वभाव समीक्षा है। मैंने अन्य भाव से मत देख, अनन्य भाव से देख, अन्यपना मत रख, ऐसा जैसे अहमपना और विवेक करते हैं वैसे करना। आपको अहमपना करना आता तो है, लेकिन गलत जगह पर भी जो आता है तो अपने आप में आने में कौन सी गड़बड़ी है? दिखाई दे रही है किसको? मतलब सामने वाली वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन किसको? घटपट आदि जान तो ऐसे तैने मा जान लाल ने जान नहीं आते क्यों अज्ञान दूसरी वस्तु दिखाई रही है लेकिन किसको दिखाई रही है? तो देखने वाला है उसको दिखाई रही है, तो देखने वाला है ही नहीं है और दिखाई रही है, तो उसको कितना गौण कर रहे हो? दूसरी वस्तु देखने के काल में कितना गौण कर रहे हो? अत्यंत गौण कर दिया, उसको मुख्य रखना है उसको गौण कर दिया। अपनत्व भी करते हैं द्वैत नहीं है, अद्वैत है। देखने वाला देखता है वो तो वचन व्यवहार है, वस्तु एक अभेद है, वस्तु में दोपणा नहीं है। मर्यादित दोपणा है उसको गौण कर देना है और अभेदता को मुख्य करनी है। प्रश्न आता है अपनत्व कैसे करें, अपनत्व करते हैं कैसे करते हैं? उसको अपना परिणाम को देख करके अवलोकन करके समझो हम कैसे अपनत्व कर रहे हैं। जहाँ हमारा स्वरूप नहीं, जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं, वहाँ अपनत्व करते हैं, और जहाँ अस्तित्व है वहाँ अपनत्व कैसे करें वो प्रश्न उठता है। देखिए कैसी विचित्रता है, कितनी विचित्रता है। थोड़ा शांति से अपना अपने आप में वो कैसी गड़बड़ी चल रही है और वो कैसे मिटे उसका बराबर संशोधन करना चाहिए।
तो
वहाँ सुख है के लिए तलाश करो। तो वास्तविक जहाँ अपनत्व हो रहा है वहाँ वास्तविक सुख है के नहीं ये मेरा, उसकी तलाश करो, जांच करो। तो सुख नहीं है और सुख सुख का आभास होता है तो ये भ्रांति है, ये दुखा जाती है। तो खुद को दुख में रख करके दुखी होता है, उसका परिणाम क्या है, नतीजा वो है कि उससे दुख होता है। आत्मा का स्वभाव में पुद्गल कर्म का बंधन और स्पर्शन उसको और सत्यार्थ है और उद्गार्थ है। कैसे मैं कर्म बंधन से रहित हूँ ऐसा स्वभाव का अनुभव अपने रूप करना चाहिए। तो ये बात कहा कल वहाँ से चलित कथा। जैसे मिट्टी का ढक्कन घड़ा गाड़ी इत्यादि पर्याय से अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है सत्यार्थ है अन्य पर नहीं क्या कि जो ढक्कन है वो घड़ा नहीं घड़ा है वो गाड़ी नहीं। एक ही मिट्टी की अनेक पर्याय होती है बार बार घड़ा फूट जाता है फिर मिट्टी मिट्टी में मिलती है फिर दूसरा उसमें से बर्तन बनता है। तो ऐसा अन्य अन्य पणा अन्य अन्य पर्याय अन्य अन्य अवस्थाएं सत्यार्थ है भूतार्थ है पर्याय को देखने पर। तथापि सर्वतः अस्खलित मैंने सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्र अभूतार्थ है असत्यार्थ है। कितना भी अवस्था बदले मिट्टी में लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही रही मिट्टी का स्वभाव नहीं बदला मिट्टी अपने स्वभाव से अन्य नहीं हुई अनन्य रही। तो ये जो अन्यपना है वो स्वभाव में अभूतार्थ है असत्यार्थ है उसका वहां स्थान नहीं है। दृष्टांत इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है सत्यार्थ है। एक ही आत्मा चार गति में भटकता है तो मनुष्य होता है नारकी होता है देव होता है चिड़ियन होता है। तो ऐसी पर्याय का अनुभव करे तो अन्य अन्य अवस्था हुई है अवश्य हुई है नहीं हुई है तो बात नहीं है कल्पना नहीं है। वो जैसे वेदांत कहता है कि ये सब माया है ऐसा कुछ होता ही नहीं ऐसा नहीं है। चार गति की पर्याय जिनको संसार में होती है और उसका अनुभव भी होता है क्या उसी पर्याय का अनुभव भी होता है फिर भी वो मुख्य मुख्य करने लायक नहीं है किंतु गौण करने लायक है। तो वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय है उसको गौण करने लायक है वर्तमान की मनुष्य पर्याय गौण करने लायक है कि मैं मनुष्य नहीं मैं आत्मा हूँ ऐसा लेना है। फिर मनुष्य का जो भी जितना भी संबंध हो ये सब छोड़ देना है मनुष्य नहीं तो मनुष्य का शरीर भी मैं नहीं मनुष्य का शरीर नहीं तो स्त्री पुरुष आदि मैं नहीं। फिर जितने भी संबंध है पिता के पुत्र के भाई के बहन के मामा के भांजा के जो भी जितने भी है कोई भी मैं नहीं ये सब आ जाता है। तथापि मतलब उसको ध्यान करके सर्वतः अस्खली सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाला एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है असत्यार्थ है। तो क्या कहा तो स्वभाव तो स्वभाव से अस्खलित रहता है सर्वतः मैंने सर्वथा अस्खलित रहता है सर्व प्रकार से अस्खलित रहता है किसी भी प्रकार से स्वभाव में दूसरा होता नहीं ये चैतन्य आकार स्वभाव है, मैंने चैतन्य एकाकार स्वभाव है, तो तीनों काल एकाकार चैतन्य स्वभाव ही रहता है। मैं एक चैतन्याकार स्वभाव हूँ, एकाकार चैतन्य ऐसा मैं हूँ, ऐसा स्वभाव चैतन्य जाना। तो वहाँ नर नार का भी पर्याय दिखने में आइए तो कहा ही नहीं, वहाँ नहीं है, इसलिए इसका अनुभव नहीं होगा। और स्वभाव जैसा है वैसा अनुभव होगा। दृष्टांत इसलिए देते हैं कि नीचे माटी में से अनेक बर्तन होते हैं, लेकिन माटी तो अस्खलित रहती है। माटी माटी बना से च्युत होती है क्या नहीं होती है? माटी माटी के स्वभाव से बदलती नहीं, च्युत नहीं होती, मतलब बदलती नहीं। ऐसे आत्मा नर नार का भी अनेक पर्याय धारण करता हुआ भी आत्मा रूप से मिट जाता नहीं, बदल जाता नहीं, चैतन्य चैतन्य ही रहता है। सामान्य चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पर्याय निगोद की हो, चाहे पर्याय सिद्ध की हो, अन्य गति क्या, पंचम गति भी ले लो ना। तो ये जो सामान्य स्वरूप है आत्मा का, मूल स्वरूप है, वो तो जैसा का तैसा ही बना रहता है, कोई फर्क उसमें। हाँ अभी सिद्धालय में हूँ, कल रात को आया ना, मतलब शुद्ध स्वरूप में मैं हमेशा, मेरा अस्तित्व रहा है कहीं भी, मेरा अस्तित्व मेरे शुद्ध स्वरूप मूल स्वरूप से विचलित हुआ, स्खलित रहा है, कभी च्युत नहीं हुआ मैं मेरे स्वरूप से। लेकिन जब मैं भूल जाता हूँ मेरे स्वरूप को तो बड़ी बड़ी गड़बड़ी होती है। मैं मनुष्य हूँ ऐसे अनुभव में मैं आत्मा हूँ ये अनुभव नहीं रहने वाला, और मैं एकाकार चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ ऐसे अनुभव में मैं मनुष्य हूँ ऐसा अनुभव रहने वाला। हाँ मनुष्यत्व का ज्ञान रहेगा लेकिन मनुष्यत्व का अनुभव नहीं रहेगा। अनुभव और जानना में फर्क होता है ना, जानना एक बात है, अनुभव करना दूसरी बात है। स्वतः प्रकाशक जानना होता है, स्वतः अनुभव कभी होता नहीं है, पर का अनुभव ही नहीं होता क्या, पर का अनुभव होता ही नहीं। जो मानता है कि मुझे पर का अनुभव होता है तो धोखा है, वो भ्रांति है, इसलिए उसको मिथ्या अनुभव कहने में आता है। मिथ्या अनुभव वास्तव में आत्मा आत्मा है, आत्मा को अन्य का अनुभव हो सकता। कितनी बड़ी गुरुदेव कहते थे कि एक मन की आठ पांचरी होती है, 40 शेर का मन होता है ना, पुराने जमाने की बात है। तो आठ में एक पांचरी की भूल हुए, दो पांचरी की भूल हुए, चलो लेकिन आठ में नौ पांचरी की भूल है ये क्या, एक मन में नौ पांचरी की भूल है, ये आठ पांचरी की नहीं है। कितनी बड़ी भूल है, हम हमारी जात को बहुत बुद्धि वाला सूक्ष्म वाला चालाक होशियार विचक्षण समझते हैं, लेकिन मन में नौ पांचरी की भूल चलती है। हाँ कैसे भूल चलती है, मन में नौ पांचरी की भूल चलती है। क्या कहना, अपने आप को जो दुखी करे, अपने आप का अहित करे, उसमें उनकी क्या प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करने लायक बात है क्या? क्या कहना, कैसा है स्वभाव, के सर्वतः स्खलित एक चैतन्याकार है। अनंत पर्याय चार गति की हुई, लेकिन इस पर्याय भेदों से स्वभाव भेदा गया नहीं, पर्याय भेदों से स्वभाव को भेदा गया। तो अभी भी रहा, जैसे तालाब में पानी पड़ा है, उसको कोई लकड़ी मारे, उसमें कोई पत्थर फेंके तो पानी अलग हो जाएगा क्या? टुकड़ा हो जाएगा तो कुछ खलबली होगी, लेकिन पानी तो पानी ही बना रहेगा। पानी में दो टुकड़ा होने वाला, लकड़ी मारने से पानी का टुकड़ा नहीं होता। ऐसे पर्याय भेदों से अभेद स्वभाव में किंचित मात्र भी फिरता उछल पुछल कुछ होता, कोई असर ही नहीं पहुंचती। पर्याय की असर स्वभाव तक पहुंचती ही नहीं, क्यों? तो उसका अस्तित्व वहां नहीं है। ऐ भूतार्थ मतलब उसका अस्तित्व वहां नहीं है। स्वभाव में पर्याय का अस्तित्व नहीं है, ये बात है। ऐसे आत्म स्वभाव में तन्मय भाव से अहमपना करके अपने रूप में अनुभव करना, वही स्वभाव समीप जाना है, उसको स्वभाव की समीपता कहने में आती है। ऐसा अनुभव करने पर ये जो पर्याय से भेद है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ज्ञानी कभी अपनी को मनुष्य मानते नहीं, न मनुष्य मानते, न गृहस्थी मानते, न त्यागी मानते, क्या न पंडित मानते, न विद्वान मानते, न मूर्ख मानते, न राजा मानते, न रंक मानते, कुछ मानते नहीं। मैं आत्मा हूँ उतना ही
मानते।
सभी आगम में यही बात कही है, बारह अंग का सार वही है। बारह अंग का सार यही है कि अपने मूल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में अपनापन कर लेना। दूसरी जगह अपनापन किया है उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में अपनापन करना, इसलिए उसको दिखाते हैं आचार्य महाराज, इसलिए तो दिखाते हैं। तीसरा, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नीचे स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। क्या कहा? कि समुद्र में बाढ़ आती है और समुद्र में ओट भी आता है, तो कहते हैं कि अभी पानी बढ़ गया, अभी पानी बढ़ गया। अगर पूरा समुद्र के देखो तो कोई उसमें बदम बदगट हुई नहीं है, और वैसे धरती आती है तो उछलते हैं, मुझे तरंग सब बहुत उछलते हैं और उसमें स्थिर रहता है पानी, लेकिन नीचे पानी के तल में जाओ तो वो नीचे स्थिर है। ऐसा है समुद्र भीतर में तो नित्य स्थिर है, क्योंकि तरंग है कुछ ऊपर ऊपर के लेवल में होता है। भीतर में देखो तो पानी बिल्कुल स्थिर है समुद्र का, वहां कोई हलचल होती नहीं। ऐसा समुद्र का स्वरूप है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर, पर्याय में अनेक प्रकार की वृद्धि हानि होती है, कभी किस गुण का परिणाम बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। जैसे निर्वेद में जाता है तो ज्ञान अनंत में भाग में रह जाता है, और मनुष्य होता है, देव होता है, मतलब ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मातक ज्ञान बढ़ता है। तो वृद्धि हानि तो होती है, ज्ञान की पर्याय में कमी बैठी तो होती है, ऐसे सर्व गुणों की पर्याय में कमी बैठी होती रहती है। तो ऐसी अनियतता, मैंने एक रूप का पर्याय पूछा तो ठीक है, होती है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अद्भुतार्थ है और असत्यार्थ है। लेकिन अपने भीतर में जो आत्म स्वभाव है उसमें कोई वधघट होती नहीं, अवधघट है, शब्द मिला है पत्र में, सुधन नहीं है, अवधघट स्वभाव है, बढ़ता भी नहीं घटता भी, वैसा स्वभाव है, अनादि अनंत वैसा का वैसा ही रहता है, मेरे में कोई वधघट होती नहीं है। ऐसा मैं अपना करना स्वभाव में और पर्याय की वृद्धि हानि में अपने स्वभाव नहीं करना, तो मेरा ज्ञान अभी बढ़ गया ऐसा करने लायक नहीं है। कुछ शास्त्र स्वाध्याय से सूक्ष्म बढ़ जाए तो मेरा ज्ञान बढ़ गया ऐसा लेना, मेरा स्वरूप में तो अनंत ज्ञान की खानी भरी है, अनंत सुख की खानी भरी है, न उसमें कोई बढ़ता है न कोई उसमें कोई घटता है, पूर्ण होने से बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं और उसमें कोई कमी भी बिल्कुल होती नहीं है। ऐसा स्वभाव का अनुभव करना की बात लिया है। सब कहते हैं कि जैसे सोने का दृष्टांत देते हैं, चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या बात, सोना पीला होता है, चिकना होता है और वजनदार भारी भी होता है। तथापि जिसमें सर्वविशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अद्भुतार्थ और अत्यार्थ है। सोना इतना नाम से ही अभिज्ञान होता है, सोने का एक सोना शब्द से सोने का अभिज्ञान होता है, तो वहाँ पीलापन, चिकनापन, भारीपन का विचार आता ज्ञान में, वो विषय नहीं होता। पीलापन आदि क्या भेद का, भेद का ज्ञान वहाँ नहीं होता, अभेद में भेद का ज्ञान नहीं होता। हाँ, भले ही अभेद में भेद का ज्ञान गर्भित है, लेकिन वहाँ भेद वाला ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं है। जैसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अद्भुतार्थ है और असत्यार्थ है, इसी प्रकार अभेद एकाकार अनंत गुण का एक रूप द्रव कैसा है, अनंत गुण का एक रूप द्रव है, उस एक रूप द्रव को जिसमें अनंत गुण का विशेष विलय हो गया है, ऐसा स्वभाव है, उसको समीप जाकर अनुभव करना, मैं ऐसा अभेद स्वरूप हूँ और मैं ऐसा अभेद स्वरूप हूँ, द्रव स्वरूप हूँ, उतना अभेद का और द्रव का भेद भी जहाँ लेना नहीं है, ऐसा लेना क्या, द्रव का भी भेद नहीं लेना, अभेदता का भी भेद नहीं लेना, क्योंकि अभेद भेद सापेक्ष है, द्रव पर्याय सापेक्ष है, ऐसा भी कोई सापेक्ष पड़ा निरा निरपेक्ष, मेरा स्वरूप है, ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव करना, वहाँ सभी विशेषता ऐसा और ऐसा हो जाती है। अपने को गुण भेद की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अपने ज्ञान में गुण भेद की अपेक्षा होनी चाहिए, नहीं करना ही होता है कि आत्मा में कितने गुण कि अनंत गुण, हम कितने जानते हैं तो जितना हम 150 गिनती कर सके उतने ही जानते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मा का अधूरा ज्ञान होता है या आत्मा का पूरा ज्ञान होता है? पूरा आत्मा का ज्ञान होता है कि अधूरा ज्ञान होता है? पूरा आत्मज्ञान होता है, तो पूरा आत्मज्ञान होता है। और गुण तो इसके जो गुण है वो तो हमने बहुत कम जाने, अनंत गुण में से 150 को जाने वो तो कितना कम हो गया, तो भी वहाँ अधूरा ज्ञान नहीं कहने में आता, क्योंकि अभेद का ज्ञान में पूरा ज्ञान आ जाता है। लेकिन दूसरे अनंत गुण नहीं जाने इसका क्या, तो दूसरे अनंत गुण जानने का आत्मज्ञान में कोई प्रयोजन नहीं है क्या? आत्मज्ञान में गुण भेदों को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, खाकर के मिठास को अनुभव करना है, वही शक्कर है। दूसरे बहुत से गुण होने पर भी हमारे मतलब तो मिठास से है क्या? जैसे गुड़ होता है तो कोई कलर अच्छा होता है गुड़ का, जैसे तो कोई गुड़ का कलर ठीक नहीं होता है, लेकिन अच्छा कलर वाला मीठा नहीं हो तो उसमें खारापन ज्यादा हो तो नमक डालते ना, नमक डालते तो हम पसंद करेंगे, तो हमें मिठास से संबंध है, उसका कलर से कोई संबंध, तो हमें आनंद से संबंध है। अभेद आत्मा का अनुभव करने पर हमें आनंद आता है, हमारा प्रयोजन आनंद से है, ज्ञान से भी आता है। दृष्टि प्रकाश में हमें ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, हमें तो आनंद का सुख का प्रयोजन है, बस बात खत्म। तो कितने गुण है कितने नहीं है, अनंत कैसे कैसे हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, ये पहचान करने के लिए प्रयोजन की बात तो सुख की रहती है, ज्ञान की, ज्ञान भी क्यों करना, सुखी होनी चाहिए। आत्मज्ञान क्यों करना, तो सुखी होने के लिए, तो प्रयोजन तो सुखता रहता है। इसलिए आत्मज्ञान में गुण भेदों की अपेक्षा नहीं है, ऐसी बात है। पहचान के काल में कुछ स्टेज दूसरा है, अनुभव का स्टेज दूसरा है, पहचान के काल में भाववासन का स्टेज है, अनुभव के काल में वो बात नहीं रही। जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले जो सीढ़ी पर पग रखा है ऊपर जाने के लिए वहां से उठाएंगे, वहां से उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, तो ये तर्क करना ठीक है क्या कि अगर पैर उठाना था तो रखा ही क्यों? ऐसा कोई तर्क कर देवे तो कि जिस सीढ़ी पर से आप पैर उठा लेते हो उस पर पैर क्यों रखा, जब उठा लेना था तो रखा ही क्यों? ऊपर जाने के लिए पहले रखना पड़ता है फिर उठा लेना पड़ता है, तभी ऊपर जा सकते हैं। रखे भी तो उठाने का सवाल नहीं रहता है, और फिर ऊपर जाने का भी सवाल, ऐसे जो ऊपर ऊपर चल जाते हैं तो नीचे का जो स्टेज है उसको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूपी आत्मा पहचाना जाता है, और जब पहचान होती है तो आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, आत्मा में अनंत सुख भरा है, ऐसी पहचान होती है, और तब परिणाम को सुख का आकर्षण होने से वो सुख के प्रति गति से आवेग से
संसार सुख जाता है, पर सुख नहीं होता तो नहीं जाता, फर्क करें। तो अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो परिणाम आत्मा के प्रति कभी गति करता और बाह्य पदार्थों के प्रति परिणाम जाता है। इसका यही कारण है कि वहाँ सुख का निश्चय कर रखा है। जहाँ जहाँ जिस विषय में सुख का निश्चय कर रखा है, भले ही वो निश्चय गलत है, तो भी परिणाम को वहाँ जाने के लिए रोक भी लगा सकते हैं। तो परिणाम को सुख का बहुत बहुत आकर्षण रहता है, ये बात एकदम सभी को अनुभव गम्य है। निर्वस्त्र दशा में ऋतु का प्रकोप कोई तकलीफ नहीं देता होगा क्या? बहुत ठंड पड़ती है आपके यहाँ तो, बहुत पड़ती है। वहाँ दिगंबर जी भी करते रहते हैं, तो कपड़े तो बहुत पहनते हैं फिर भी घर में छिप कर रहते हैं, और सोते हुए तो और भी छिपकर राजा वगैरह बहुत खिड़की फिड़की बंद करके हैं। निर्वस्त्र दशा का क्या हालत है, क्यों उनको ये तकलीफ नहीं होती? हार तो ध्यान नहीं होता, गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी बढ़ जाती है, नहीं होता। क्यों? कि वो अपने भीतर में सुख में, इतने सुख में रहे, इतने सुख में रहते हैं कि वो बाहर आते ही नहीं। वैसे शरीर का उपयोग ही नहीं है, ऐसा सुखमय उपयोग हो जाता है कि जैसे शरीर का उपयोग ही नहीं है। तो शरीर में उपयोग जो फैलता है वो फैलता ही नहीं उनको, ऐसा आत्मा में सुख में डूब जाते हैं, उनको कोई असर होती ऐसी बात है। तो घर में ही नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, और ठंडी वहां पे ज्यादा होती है, गर्मी भी वहां ज्यादा होती है, फिर भी सुख में उपयोग लगा रहता है तो और जगह जाता ऐसी बात है। इतना सुख का आकर्षण है जी, ये लोहे का चना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गप्पाबाजी है। कोई लोहे का चना एकदम तो सही पूरी करा दी है, मुनि एकांत सुखी है, उनको अर्थ ज्ञान होता नहीं। अर्थ ज्ञान हुए तो कर्म बंधन बढ़ जाए, लेकिन वो तो निर्जरा करते हैं, पूर्व कर्म की निर्जरा करते हैं, उस पर उनको वेदना बढ़ती है, कुछ भी सर्व परिश्रम होता है तो वहाँ निर्जरा बढ़ती है, कर्म बंधन होता, अर्थ ज्ञान में आते नहीं कभी। ऐसा अनंत सुख में वो डूबकी लगाते हैं, तो ऐसा महा आश्चर्यकारी पदार्थ है, अद्भुत से अद्भुत अनंत सुख से भरा हुआ महा आश्चर्यकारी पदार्थ है, तो शुद्धने का विषय है। उसका ज्ञान करके, श्रद्धान करके उसमें लीनता करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या? हाँ वो तो मयावश करते हैं ना, मयावश करते हैं, कभी कोई को बीमारी आ जाती है तो दूसरे मुनि विकल्प में होते हैं, वो मुनि मयावश करते हैं, मुनि विकल्प में रहते तो भाव नहीं आता। तो भगवती आराधना का कोई प्रसंग है, क्या कहते हैं तो? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुरु रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषताएं कृतार्थ है, प्रत्यार्थ है, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसा मालूम पड़ता है भीतर में कुछ है ही नहीं, शून्य है, ऐसा नहीं है, अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, लेकिन अनंत गुणों के भेदों को गौण करना है। कि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, सर्व भेद है वो विलीनता को प्राप्त हो गए, ऐसे अभेद आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अधिकार्थ है और असत्यार्थ है, वहाँ विशेषता मालूम पड़ती है। और विशेषता देखने को गुणभेद देखने की अपेक्षा भी वहाँ रहती है, वहाँ तो सुख में बाधा हो जाएगी। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा भेद विकल्प उठने से जो निर्विकल्प सुख है उसमें बाधा पहुंचती है, तो इसलिए भेद वो सुख में बाधा कारक है और अभेद है वो सुख का साधक है, ऐसा समझकर अभेदता में एकाकार होना। जय और दृष्टान देते हैं, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, प्रत्यार्थ है। पानी गर्म होता है, उष्ण होता है, जब यह अग्नि के संसर्ग में आता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी सत्यार्थ है। क्या कहा, गर्म पानी का हम अनुभव करें तो पानी में उष्णपना है तो मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है, माने ही नहीं गर्म पानी के गर्म अवस्था को, माने ही नहीं बिल्कुल, तो ये बात होती नहीं ऐसा है। ऐसे पर्याय में विभाव होता है, विकार होता है, नहीं होता है, वेदांत कहते हैं कि होता ही नहीं ऐसा नहीं है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता है, विकार और असत्यार्थ है। पानी का स्वभाव, पानी गर्म है उस वक्त भी शीतल है, क्या जब पानी शीतल है तब तो स्वभाव शीतल है ही, लेकिन पानी गर्म हुआ तो स्वभाव बदल गया क्या, तो स्वभाव नहीं बदला, स्वयं ठंडा हो जाएगा पानी। अग्नि से गर्म हुआ पानी स्वयं क्यों ठंडा होता है, स्वभाव शीतल होने का है, तो स्वभाव तो पानी गर्म होता है उस वक्त भी शीतल शीतल ही रहता है, स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझ सकते कि नहीं समझ सकते, पानी की गर्म अवस्था के काल में हमारे ज्ञान की पहुंच उसके शीतल स्वभाव पर होती है कि नहीं होती है, ऐसे अवस्था में विभाव होते हुए भी हमारी पहुंच हमारे निर्विकार स्वभाव तक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हो सकती है, ऐसी बात है, ऐसा लेना क्या, ये गर्म बना लिया है। उसका ये भी दृष्टांत ले सकते हैं कि पानी मैला होता है मिट्टी वाला, बरसात आती है पानी बहता है सड़क पे तो पानी मैला होता है, तो मिट्टी का संयुक्त बना हुआ पानी मैला हुआ, पानी मैला हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन स्वभाव से देखो तो पानी उस वक्त भी निर्मल है, निर्मल है कि मैं स्वभाव से निर्मल नहीं है क्या, अगर उस वक्त स्वभाव तक ज्ञान नहीं पहुंचता तो उस पानी को निर्मल करना ही कोई प्रोसेस कर सकते नहीं, उसकी निर्मल करने की प्रक्रिया ही नहीं होती। पानी मैला है और हम इसका पीने के लिए उपयोग करते हैं तो उसको मैलापन दूर करके उपयोग करते हैं, जब मैलापन दूर करके उपयोग करते हैं तो उसका निर्मल स्वभाव पहले जान लेते हैं, बाद में मैलापन दूर करने की प्रक्रिया होती है। जैसे संसार अवस्था में विभाव होने पर भी स्वभाव निर्मल है, स्वभाव तक पहुंच हुए तो कैसे परिणाम को निर्मल करे, ये प्रक्रिया बन सकती है, ये विधि को समझ सकते हैं। हमें संसारी है, हम संसारी है
ऐसा पकड़ कर कहाँ तक बैठना है, जब संसारी है उस वक्त भी असंसारी सिद्ध है कि नहीं है। चलो अवस्था में संसार बना है, मलिन बना है, और स्वभाव में सिद्ध बना और निर्मल बना है, दोनों है क्या? दोनों है, है? उसी एक ही काल में दोनों है, स्वभाव भी है और अवस्था में संसारी बना और विभाव भी है। जब दोनों है तो आपको भजन कहाँ रखना है, आपको कहाँ झुकना है, आपको सिद्ध पद को नमस्कार करना है या संसार पद को नमस्कार करना है, झुकना मैंने नमस्कार करना, ये नमस्कार ही सारा है किसके लिए है, सिद्धों के लिए है क्या? ये श्लोक किसके लिए है? ये जो संसार में है उनके लिए नमस्कार सारा है, उनको नमस्कार, समय सार को नमस्कार करो, संसार को नमस्कार मत करो। जहाँ तक हमारी आदर बुद्धि संसार में है वहाँ तक आत्मा में आदर बुद्धि आएगी, इसलिए तथापि करके के गौन कराते हैं, तथापि तथापि क्यों करते हैं कि ऐसा है फिर भी ऐसा भी है। परमात्मा भी अपने स्वरूप में खड़ा है और मलिन भाव पर्याय में विद्यमान है। अब आपको कहाँ जाना है, परमात्मा के पास जाना है या मलिन पर्याय उसमें रहना है, आपको कहाँ रहना है, किस घर में रहना है? दो घर है भीतर में, जो मलिन पर्याय है वहाँ रहने से तो दुख का अनुभव होगा, परमात्मा में जाएंगे तो सुख का अनुभव होगा। पसंद भी आपकी है, वस्तु तो ऐसी है, दोनों बात दिखा देते हैं आचार्य महाराज। आचार्य महाराज तो दो ही बात दिखा देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ अभेद का साधना, उपयोग में अहम प्रणा नहीं रखना, यहाँ तक के उपयोग में भी अहम प्रणा नहीं रखना, ऐसा त्रिकाली में अहम प्रणा करो कि उपयोग आदि पर्याय मेरी ओर आती है क्या, उपयोग आदि पर्याय मेरी ओर आती है, मुझे वहाँ जाना है वो बात नहीं है, क्योंकि वो तो अपनत्व रख लिया वर्तमान अंश में, वर्तमान अंश में अपना अपन छोड़ देना है, क्योंकि यही पर्याय बुद्धि है, यही दिशा बुद्धि है। जाना संगति, हाँ तो छोड़ दो दूसरे का संग, क्या दूसरे का संग से ऐसा होता है तो दूसरे का संग छोड़ दो, दूसरे का संग क्यों करता है उपयोग, वहाँ सुख बुद्धि है इसलिए सुख माना है संग करता है। उसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता विकार है, जिसे आत्मा में मोह कर्म के संग में जाकर के मोह कर्म के उदय को अनुसर करके मोह भाव होता है वो सत्यार्थ है, वहाँ परिणाम में मोह हुआ है, मोह कर्म के उदय से अपना वहाँ संबंध रख करके पर्याय में मोह हुआ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध स्वरूप है, जो स्वयं एकांत ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं एकांत निर्मोह स्वरूप है, क्या अवस्था में मोह है तब भी आत्मा स्वरूप से एकांत निर्मोह स्वरूप है। देखो यहाँ एकांत शब्द लगा दिया, ये सम्यक एकांत है, जैन दर्शन में तो अनेकांत होता है, ये अनेकांत भी सम्यक हो गए तो सही है, वरना मिथ्या अनेकांत सही नहीं है, ऐसा एकांत भी सम्यक होना चाहिए, मिथ्या एकांत होना नहीं चाहिए। तथा अर्थात जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता है, भूतार्थ है, है सत्यार्थ है, अवस्था में मोही बना है, उस वक्त भी अनादि अनंत सदा ही निरंतर स्वभाव मोह का अभाव स्वरूप है। स्वभाव में मोह की पहुँच, विकार की, विभाव की पहुँच स्वभाव में नहीं है। किसी भी आत्मा को, विरोध का आत्मा हो, कोई भी पर्याय में आत्मा हो संसार में, उसकी विभाव की पहुँच पर्याय में समाप्त होती है। विभाव पर्याय तक व्यापक होता है, व्याप्ता है, इससे आगे जाकर के स्वभाव में व्यापकता, स्वभाव कभी मेला हुआ ही नहीं, मलिन हुआ ही नहीं, विभावित हुआ ही नहीं, स्वभाव स्वभाव रहा है। ये जान कर भव्य जीव को आनंद होता है, खुशी होता है कि मेरे स्वभाव में कभी मोह गया, मैं तो हमेशा निर्मोही रहा। ऐसा स्वभाव को समाजने से, मुक्त करने से, अपना स्वरूप जान करके अनुभव करने से, कि मोह है वो अवस्था में भी रहने वाला, स्वभाव में तो था ही नहीं, अवस्था में भी शुरू ही वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्वभाव को अनुभव करने से अवस्था में भी सब जो सुधार चाहिए वो सुधार हो जाता है। स्वभाव में तो गड़बड़ी हुई नहीं है, वहाँ तो सुधार करने का सवाल भी नहीं रहा। इसलिए स्वभाव को संभालने के लिए ये सब बातें बताई है आचार्य महाराज ने।
Yeah.